ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शुभ्रा भट्टाचार्य। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। आदिम जाति विकास आयुक्त ने प्रदेश के आश्रम छात्रावासों में अनधिकृत रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों पर तत्काल निष्कासन की कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ और अमित शाह, राजनाथ सिंह, जेपी नड्डा, पीयूष गोयल तथा नितिन गडकरी सहित कई केंद्रीय मंत्री उपस्थित थे। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए हैं। पुलिस अधीक्षक जितेंद्र कुमार यादव ने बताया कि जिले के दक्षिण पश्चिमी इलाके में माओवादियों की मौजूदगी की सूचना के आधार पर सुरक्षा बल के जवानों को रवाना किया गया था। इसी दौरान जवानों पर माओवादियों ने फायरिंग शुरू कर दी। जवानों ने भी जवाबी कार्रवाई की। मुठभेड़ के बाद सुरक्षा बलों द्वारा घटनास्थल की तलाशी के दौरान 2 माओवादियों के शव बरामद किए गए। साथ ही 303 राइफल सहित अन्य हथियार और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई है। इस बीच गरियाबंद जिले के मैनपुर इलाके में कल हुई मुठभेड़ में मारे गए 10 माओवादियों की शिनाख्त कर ली गई है। मारे गए माओवादियों में माओवादी संगठन के 3 वरिष्ठ सदस्य भी शामिल थे। इन माओवादियों पर 5 करोड़ रुपए से अधिक का इनाम घोषित था। एडीजी नक्सल ऑपरेशन विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि मैनपुर इलाके में हुई मुठभेड़ में मारे गए 10 माओवादियों के शव बरामद कर लिए गए हैं। घटनास्थल से 10 हथियार और अन्य सामग्री बरामद की गई है।
नक्सलियों के द्वारा सुरक्षा बलों पर फायरिंग किया गया, उसका जवाब सुरक्षा बलों ने मुंहतोड़ जवाब दिया। ये इनकाउंटर कल 4 बजे के बाद से लगातार रात भर चलती रही, रुक रुक के, और फाइनली जब फायरिंग बंद हुई तो मौके पर से 10 माओवादियों के शव मिले और बहुत बड़ी संख्या में हथियार, जिसमें AK-47, इंसास, SLR एवं MTR बरामद हुए। और जो 10 शव बरामद हुए, जिसमें 6 पुरुष के हैं, 4 महिला का, जिसमें की 1 सेंट्रल कमेटी का मेंबर है मोटम बालकृष्णा, जो उड़ीसा स्टेट कमेटी का इंचार्ज था। साथ में 2 स्टेट कमेटी मेंबर्स भी इसमें उनका न्यूट्रलाइजेशन हुआ। इसके अलावा अन्य 7 कैडर मारे गए। जो नक्सली मारे गए 10, जिनके ऊपर कुल 5 करोड़ से ज्यादा का इनाम था। निश्चित तौर पर पुलिस को बहुत बड़ी सफलता मिली है।
मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने केंद्र सरकार द्वारा किए गए GST सुधारों को ऐतिहासिक बताया है। आज रायपुर में पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए श्री साय ने कहा कि GST के 4 स्लैब को 2 स्लैब में लाया गया है। इससे व्यापारियों, उद्योगपतियों, किसानों और आम नागरिकों को फायदा होगा।
हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री GST में रिफॉर्म लाके 4 स्लैब था, उसको 2 स्लैब में उन्होंने लाके खड़ा किया है। और इससे निश्चित रूप से और भी ज्यादा हमारे व्यापारियों को, उद्योगपतियों को और किसानों को और हमारे देशवासियों को इसका लाभ हुआ है। बहुत सारे कृषि संयंत्र की कीमत, कीटनाशक, खाद वगैरह, ये 5% GST के स्लैब में है। रोजमर्रा की जो चीज है, जैसे तेल है, शैम्पू है, टूथपेस्ट है, मक्खन, पनीर, सिलाई मशीन से लेकर ट्रैक्टर, ये सब के दाम ये GST रिफॉर्म से सस्ते होंगे, तो हम इसको बोल सकते हैं कि गुड एंड सिंपल टैक्स।
श्रोताओं, केंद्र सरकार द्वारा GST में किए गए सुधारों पर प्रादेशिक समाचार एकांश आकाशवाणी रायपुर द्वारा कल विशेष कार्यक्रम का प्रसारण किया जाएगा। ये कार्यक्रम कल सुबह 9:55 पर प्रसारित होगा। वहीं प्रादेशिक समाचार एकांश का समसामयिक विषयों पर आधारित कार्यक्रम बातों बातों में इस बार केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गई स्प्री योजना के बारे में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के क्षेत्रीय निदेशक भूपेंद्र कुमार से ली गई भेंटवार्ता का प्रसारण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रसारण कल 13 सितम्बर को FM चैनल पर सुबह 9 बजे से और प्राइमरी चैनल पर सुबह 10:30 से किया जाएगा। इसे छत्तीसगढ़ स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र रिले करेंगे। राष्ट्रकुल संसदीय संघ भारत क्षेत्र के सम्मेलन का आयोजन बेंगलुरु में किया जा रहा है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कल इस 3 दिवसीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ विधानसभा के अध्यक्ष डॉ रमन सिंह और विधानसभा सचिव दिनेश शर्मा सहित देश के विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के विधानमंडल के पीठासीन अधिकारी और सचिव शामिल हो रहे हैं। आदिम जाति विकास आयुक्त डॉक्टर सारांश मित्तर ने प्रदेश के सभी विभागीय सहायक आयुक्तों को पत्र लिखकर आश्रम छात्रावासों में अनधिकृत रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों पर तत्काल निष्कासन की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं। साथ ही आश्रम छात्रावासों का नियमित रूप से निरीक्षण करने को भी कहा गया है। पत्र में कहा गया है कि छात्रावासों से बाहरी व्यक्तियों और पूर्व विद्यार्थियों का निष्कासन करने के लिए स्थानीय प्रशासन और पुलिस की सहायता भी ली जा सकती है। भविष्य में अनधिकृत व्यक्तियों को छात्रावास में पाए जाने पर संबंधित अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। उप मुख्यमंत्री अरुण साव और विजय शर्मा ने नवा रायपुर में आज बस्तर ओलंपिक की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक में बताया गया कि आगामी अक्टूबर नवंबर में होने वाले बस्तर ओलंपिक में विकासखंड जिला और संभाग स्तर पर विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। इनमें बस्तर संभाग के 7 जिलों और 32 विकासखंडों के 40,000 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने कहा कि राज्य सरकार बस्तर ओलंपिक के माध्यम से बस्तर में भयमुक्त वातावरण बनाकर युवाओं को खेल और उत्सव से जोड़ना चाहती है।
एक बार फिर हम बस्तर ओलंपिक करने जा रहे हैं, उसकी तैयारियों को लेकर आज बैठक हुई है और इस बार भी बस्तर ओलंपिक पूरे धूमधाम से करेंगे। बस्तर का एक एक युवा इस प्रतियोगिता में भाग ले, विकासखंड स्तर पर, जिला स्तर पर और संभाग स्तर पर, तीनों स्तर पर ये प्रतियोगिताएं होगी और उसकी वृहद कार्य योजना आज की बैठक में हमने बनाई है। पूरे उत्साह के साथ, ऊर्जा के साथ बस्तर ओलंपिक का आयोजन फिर से इस बार करेंगे।
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल 13 सितंबर को राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। ये इस वर्ष की तीसरी लोक अदालत होगी। लोक अदालत में मोटर दुर्घटना दावा से संबंधित प्रकरण, चेक बाउंस, जलकर, संपत्ति कर, राजस्व संबंधी प्रकरण, ट्रैफिक चालान, बैंक विद्युत संबंधी प्री लिटिगेशन प्रकरण सहित अनेक मामलों का निराकरण आपसी राजीनामे से किया जाएगा। दृश्य श्रव्य माध्यम मीडिया और रचनात्मक कार्यों में रुचि रखने वालों के लिए भारत का सर्वश्रेष्ठ ग्लोबल ओटीटी प्लेटफॉर्म 26 भाषाओं में निशुल्क उपलब्ध है। वेव्स ऐप को टेलीविजन और मोबाइल पर एंड्रॉइड एंड आईओएस स्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। इस ऐप के माध्यम से फिल्म, संगीत, गेम्स, एनिमेशन, समाचार, स्टोरी टेलिंग, बच्चों के कार्यक्रम, इतिहास, धार्मिक चैनल्स, स्वास्थ्य सीरियल जैसे अनेक कार्यक्रमों का आनंद लिया जा सकता है। गौरतलब है कि 1 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ल्ड ऑडियो और विजुअल समिट वेव्स का शुभारंभ किया था। वन शहीदों की स्मृति में कल राजधानी रायपुर के राजीव स्मृति वन में 21वां राष्ट्रीय वन शहीद दिवस का आयोजन किया गया। इस दौरान वन शहीदों की याद में 2 मिनट का मौन रखकर उन्हें श्रद्धांजलि दी गई। इस अवसर पर वन मंत्री केदार कश्यप ने कहा कि वन शहीदों की शहादत हमें पर्यावरण संरक्षण की महत्ता और इसे संरक्षित करने की हमारी जिम्मेदारियों की याद दिलाती है। और अब पेश है मौसम का हाल। प्रदेश में अगले 24 घंटों के दौरान अनेक हिस्सों में हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है। वहीं बस्तर, रायपुर और दुर्ग संभाग में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा होने तथा आकाशीय बिजली गिरने की चेतावनी दी गई है। मौसम विभाग के मुताबिक एक निम्न दाब का क्षेत्र पश्चिम मध्य बंगाल की खाड़ी और उससे लगे उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी तक बना हुआ है। इसका असर छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। और अब कुछ समाचार संक्षेप में। उप मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री अरुण साव ने नवा रायपुर में आयोजित विभागीय समीक्षा बैठक में शासन द्वारा स्वीकृत सड़क निर्माण कार्यों के लिए जरूरी भू अर्जन की कार्यवाहियों में तेजी लाने के निर्देश दिए। स्वास्थ्य मंत्री श्याम बिहारी जायसवाल की अध्यक्षता में आज मंत्रालय में राज्य के सभी चिकित्सा महाविद्यालयों के डीन और मेडिकल सुपरिंटेंडेंट की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में श्री जायसवाल ने एनएमसी के मापदंड को पूरा करने के निर्देशों का पालन करने की बात कही। मुख्यमंत्री के प्रमुख सचिव सुबोध कुमार सिंह ने आज मंत्रालय में राज्य के माओवाद प्रभावित जिलों में हितग्राही मूलक कार्यक्रमों, योजनाओं और विकास कार्यों की समीक्षा की। छत्तीसगढ़ रजत महोत्सव के तहत जिला स्तर पर अनेक कार्यक्रमों का आयोजन का सिलसिला शुरू हो गया है। विभिन्न जिलों में रंगोली प्रतियोगिता और पोषण आहार मेलों के साथ ही महिला सशक्तिकरण से संबंधित कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। रायपुर रेलवे स्टेशन पर अनारक्षित टिकट काउंटर को रेलवे आरक्षण केंद्र में स्थानांतरित किया गया है। इससे अब यात्रियों को आरक्षित टिकट रेलवे आरक्षण केंद्र में स्थित काउंटर से मिलेंगे। दुर्ग जिले में बीती रात पुलिस ने धमदा रोड पर वाहनों की चेकिंग के दौरान 22 किलो गांजा जब्त कर 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। और बस्तर जिले के ग्राम किलेपाल के पास बीती रात जगदलपुर दंतेवाड़ा मार्ग पर 2 वाहनों के बीच टक्कर के बाद आग लगने से 2 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं हादसे में घायल 3 युवकों को महारानी अस्पताल से मेडिकल कॉलेज जगदलपुर में भर्ती कराया गया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने आज राष्ट्रपति भवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में सीपी राधाकृष्णन को भारत के उपराष्ट्रपति पद की शपथ दिलाई। बीजापुर जिले में सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में 2 माओवादी मारे गए। आदिम जाति विकास आयुक्त ने प्रदेश के आश्रम छात्रावासों में अनधिकृत रूप से रह रहे बाहरी व्यक्तियों पर तत्काल निष्कासन की कार्रवाई करने के दिए निर्देश। और राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा प्रदेश के सभी जिला और व्यवहार न्यायालयों में कल राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जाएगा। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।